ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर को किया संबोधित। कहा, अति अल्पविकसित देशों को विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय स्रोत का व्यवस्थापन करना है चुनौतीपूर्ण। लोगों के ज्ञान और अनुभव के संरक्षण में साहित्य और संस्कृति की अहम भूमिका होती है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल का कथन। सहकारी की रकम अपचलन के मामले में गिरफ्तार हुए छविलाल जोशी को 5 दिन हिरासत में रखने की कास्की जिला अदालत ने दी अनुमति। और इसराइल के हमले में लेबनान में कम से कम 182 लोगों की हुई मौत, 700 से अधिक लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अति अल्प विकसित देशों को दीर्घ विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 40% खर्च करने की स्थिति होती है, जिसके कारण वित्तीय स्रोत का व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर की सह अध्यक्षता निभाते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने बहुपक्षीय विकास साझेदार और विकसित देशों द्वारा कथित तौर पर उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तीय स्रोत परिचालन के लिए आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 के दीर्घकालीन प्रभाव, बढ़ते द्वंद्व और जलवायु परिवर्तन लगातार संकटों ने दीर्घ विकास की प्रगति पर गंभीर असर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस परिस्थिति के कारण विश्व में गरीबी, भुखमरी और असमानता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने की प्रतिबद्धता पूरी करने का स्मरण कराते हुए प्रधानमंत्री ओली ने जलवायु अनुकूलन और न्यूनीकरण कोषों को बढ़ाने का आग्रह किया। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए न्यूयॉर्क में रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज द्विपक्षीय बैठक हुई। टोते न्यूयॉर्क पैलेस होटल में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ उनके बीच बैठक हुई थी। बैठक के बाद संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने मीडिया से कहा कि बैठक सकारात्मक रही। बैठक में शामिल परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने बताया कि बैठक सौहार्दपूर्ण रही और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही नेपाल का दौरा करेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने राष्ट्रसंघ के लिए नेपाल के स्थायी नियोग कार्यालय न्यूयॉर्क में आज शिष्टाचार भेंट की। इसी तरह राष्ट्रसंघ के लिए कुवैत के स्थायी नियोग कार्यालय न्यूयॉर्क में कुवैत के राजकुमार एवं प्रधानमंत्री शेख सबाह अल खलीद अल हमाद अल सबाह के बीच आज भेंटवार्ता हुई। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने न्यूयॉर्क में विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय भेंटवार्ताएं की। मंत्री डॉ राणा ने कल इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो एलपी मरसुदी से द्विपक्षीय भेंटवार्ता की, साथ ही एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। कल ही मंत्री राणा ने बुरुंडी के विदेश मंत्री अल्बर्ट सिंगिरो से भी द्विपक्षीय भेंटवार्ता की। उन्होंने फिनलैंड के वैदेशिक व्यापार तथा विकास संबंधी मंत्री विल्ली तावियो से भेंटवार्ता की। विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई मुलाकातों में उनके बीच द्विपक्षीय हित के विविध विषयों के साथ ही आगामी दिनों में हो सकने वाले सहयोग और साझेदारी पर बातचीत हुई थी। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने कहा है कि नेपाली भाषा और साहित्य के विकास में राष्ट्रीय कवि माधव प्रसाद घिमिरे का योगदान अद्वितीय है। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे की 105वीं जयंती पर मर्स्यांगदी वांग्मय प्रतिष्ठान द्वारा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोर्टेल ने राष्ट्रकवि घिमिरे के योगदान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कला, भाषा, साहित्य और संस्कृति सभ्य सुसंस्कृत समाज की पहचान है। इस अवसर पर राष्ट्रपति पोर्टेल ने इस साल का राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे पुरस्कार वरिष्ठ गीतकार किरण खरेल को प्रदान किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने कहा कि भाषिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता देश की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति ही गौरव एवं पहचान है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 67वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2081 का पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में राष्ट्रपति पोर्टेल ने कहा कि भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन मानव जीवन के लिए अपरिहार्य विषय हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के ज्ञान और अनुभव के संरक्षण में साहित्य और संस्कृति की अहम भूमिका होती है। इस अवसर पर उन्होंने विजयी कवियों को पुरस्कार प्रदान किया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय ने जन्म पंजीकरण के विवरण के आधार पर कहा है कि सबसे अधिक जन्म पंजीकरण होने वाला प्रदेश कर्णाली है, जबकि सबसे कम जन्म पंजीकरण करने वाला प्रदेश बागमती है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की महिला तथा सामाजिक मामला समिति में आज हुए विचार विमर्श में तथ्यांक विभाग ने कहा कि नेपाल में 0.5% से कम जनसंख्या वाली 115 जातियों के विवरण विभाग ने साझा किए। सरकार ने नेपाल में 115 जातियों को अल्पसंख्यक और 47 स्थानीय तहों को पिछड़े क्षेत्र में सूचीकृत किया है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के सभापति अमर बहादुर थापा के नेतृत्व की टोली ने आज भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 सल्लाघर स्थित नेपाल ट्रस्ट के नाम पर रही 108 रोपनी यानी 8 बीघा से अधिक जमीन का अनुगमन निरीक्षण किया। सभापति थापा सहित समिति के सदस्य देवेंद्र पौडेल लगायत की टोली ने वहां स्थित ट्रस्ट की जमीन समेत हनुमंती नदी कॉरिडोर, भक्तपुर पालिका द्वारा संचालित कॉलेज और खोपा अस्पताल का निरीक्षण किया था। मौके पर भक्तपुर नगरपालिका के प्रमुख सुनील प्रजापति ने टोली को नेपाल ट्रस्ट की जमीन के बारे में जानकारी साझा करते हुए वो जमीन खोपा विश्वविद्यालय के लिए देने की मांग की। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने नेपाल के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार तक पहुंचाने की सुविधा देने का भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से आग्रह किया है। सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में आयोजित शिष्टाचार भेंट में मंत्री अधिकारी ने नेपाल के कृषि क्षेत्र को भारत द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार जताया था। उर्वरक की खरीद में मौजूद कुछ समस्याओं और चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने खरीद प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने का राजदूत से आग्रह किया था। जिला अदालत कास्की ने सहकारी रकम अपचलन के आरोप में गिरफ्तार छविलाल जोशी को 5 दिनों की हिरासत में रखने की अनुमति दी है। आज जिला अदालत कास्की के न्यायाधीश चंद्रकांत पौडेल की पीठ ने उन्हें 5 दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी है। ये जानकारी कास्की के प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन कुमार थापा ने दी। गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर 59 वर्षीय जोशी को 10 दिनों की मियाद देने की मांग करते हुए आज दोपहर अदालत में उपस्थित किया गया था। बता दें कि जोशी पर सहकारी धोखाधड़ी, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। विकट हिमालय जिला मुगू को साक्षर जिला घोषित किया गया है। इसी तरह जुमला के 8 स्थानीय तहों में से 5 स्थानीय तहों को साक्षर घोषित किया गया है। जिले की हिमा गांवपालिका, सिंजा गांवपालिका, कनका सुंदरी गांवपालिका, पाता राशि गांवपालिका और चंदननाथ नगरपालिका को साक्षर घोषित किया गया है। संतान की लंबी उम्र, पुत्र प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए मनाया जाने वाला संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का पवित्र जितिया पर्व आज से मिथिला क्षेत्र में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शुरू हो गया है। मिथिला पंचांग के अनुसार आज रात के अंत में औंगठन, आश्विन 8 गते मंगलवार जितिया व्रत और आश्विन 9 गते बुधवार को शाम 5:20 के बाद जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत के पहले दिन आज पूजा के बाद कोदो की रोटी, नमकीन, साग और मछली खाने का रिवाज है, जिसे स्थानीय भाषा में माछ मरुआ कहा जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाए जाने वाले जितिया व्रत को कठिन व्रत माना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमलों की शुरुआत कर दी है। लेबनान में लोगों को इसराइल ने सुरक्षित रहने के लिए हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने को कहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि दक्षिणी लेबनान के शहरों और गांवों में हो रहे इन हमलों में कम 182 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने एक बयान में यह भी कहा है कि इन हमलों में बच्चों और महिलाओं समेत 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने इससे पहले बताया था कि सेना लेबनान में व्यापक पैमाने पर और सटीक हमले करेगी। हगारी ने लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह के ठिकानों के आसपास न रहने को कहा है। आईडीएफ के मुताबिक हाल ही में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 150 रॉकेट दागे हैं। इसकी प्रतिक्रिया में इसराइल ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री योआब गैलांट ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की है। गैलांट ने अमेरिकी रक्षा सचिव को हिजबुल्लाह के खतरे और इसके खिलाफ इसराइल के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर को किया संबोधित। कहा, अति अल्पविकसित देशों को विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय स्रोत का व्यवस्थापन करना है चुनौतीपूर्ण। लोगों के ज्ञान और अनुभव के संरक्षण में साहित्य और संस्कृति की अहम भूमिका होती है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल का कथन। सहकारी की रकम अपचलन के मामले में गिरफ्तार हुए छविलाल जोशी को 5 दिन हिरासत में रखने की कास्के जिला अदालत ने दी अनुमति। और इसराइल के हमले में लेबनान में कम से कम 182 लोगों की हुई मौत, 700 से अधिक लोग हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।